चौथा इतिहास का जनक हेरोडोटस 480 से 430 ईसा पूर्व। लोगोग्राफी वर्ग के इतिहासकारों की रचनाएं हेरोडोटस के प्रसिद्ध इतिहास में परिणत हुई। हेरोडोटस आयोनियन संस्कृति के केरियन थे, अतः आयोनियन इतिहासकारों की परंपरा को उन्होंने भली भांति आत्मसात किया था। 456 से 445 पूर्व ईस्वी के लगभग इनका इतिहास समाप्त हुआ। उन्होंने यूनान और ईरान के संघर्ष का सांगोपांग वर्णन किया। एशिया का सबसे पहले नरपति जिसने यूनान पर आक्रमण किया था क्रोसस था, अतः हेरोडोटस ने उसकी वंशावली का वर्णन किया और उसके उत्थान और पतन का इतिहास लिखा। यद्यपि हेरोडोटस अंधविश्वासी थे और अपनी भाषा के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा नहीं जानते थे, तो भी उनकी जिज्ञासा बुद्धिमता और स्पष्ट हृदयता सराहनीय थी। यद्यपि उनके इतिहास के 9 भागों में प्राचीन यूनानी किंवदंतियों कथानक और गीत भरे पड़े हैं, तथापि उसमें समन्वय व्यवस्था और एकता का वातावरण है। यदा कदा उनकी आलोचनात्मक दृष्टि उनके विश्वासी मन को पार कर जाती है, वे बहुत से भवनों के ऐतिहासिक महत्व को संदिग्ध समझते थे। उनको पता था कि यूनानी मंदिरों के बहुत से अभिलेख बनावटी हैं। देल्फी के मंदिर में लेके देमोनियन परिवार ने एक कृत्रिम अभिलेख उत्कीर्ण कराकर अपने अधिकारों की पुष्टि की थी, किंतु हेरोडोटस अभिलेखों के महत्व को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने एक ऐसे स्तंभ का उल्लेख किया है जिसे यूनानियों ने देल्फी में प्लातिया के युद्ध के पश्चात बनाया था। बाद में उसे बाइजेंटियम में ले जाया गया था। 19वीं सदी में वहीं से यह प्राप्त हुआ है। इसमें प्राचीन लिपि में उन 31 राज्यों का उल्लेख है जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हेरोडोटस की आलोचनात्मक दृष्टि बड़ी गहरी और पैनी थी। यूनानी इतिहास के जनक हेरोडोटस का जन्म एशिया माइनर के द्वीप हेलिकार्नेसस में 480 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका जन्म उच्च कुल में हुआ था, परंतु परिस्थितिवश उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। इस अवसर से लाभ उठाकर उसने हखामसी साम्राज्य, मिस्र, यूनान तथा इटली आदि देशों का भ्रमण किया। उसका उद्देश्य ईरान यूनान संघर्ष का इतिहास लिखना था। इसके लिए उसने ईरान और यूनान ही नहीं अपितु अन्य निकटवर्ती देशों के इतिहास की बड़े विस्तार से चर्चा की है। उसके ऐतिहासिक अवदान का संक्षिप्त परिचय अनुवर्ती पंक्तियों में प्रस्तुत है। हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोग। हेरोडोटस को इतिहास का जनक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इसने हिस्ट्री शब्द का उल्लेख किया। हिस्ट्री शब्द से उसका अभिप्राय था अनुसंधान। यूनानी जाति की अदम्य ज्ञान पिपासा और अनुसंधित्सा हिस्ट्री की परिभाषा में प्रथम बार प्रस्फुटित हो उठी। रचनाएं। हेरोडोटस का ग्रंथ हिस्ट्रीज तीन भागों में है। प्रत्येक भाग के 3 खंड हैं। प्रत्येक भाग में पारसिक राज के उत्थान, विजयों के संदर्भ में साइरस तथा कैम्बिसोस के शासनकाल तथा दारा के सिंहासनारोहण का विवरण दिया है। दूसरे भाग में यूनान के फारस पर विजय तथा दारा के शासनकाल का वर्णन है। तीसरा भाग पराजयों एवं जेरेक्सिज के शासनकाल से संबंधित है। हिस्ट्री का स्वरूप निर्धारण। हेरोडोटस ने इतिहास के 4 प्रमुख विशिष्टताओं को प्रतिस्थापित किया जिससे इतिहास का स्वरूप निर्धारित हुआ। प, पहला, इतिहास की पद्धति आलोचनात्मक है। दूसरा, इतिहास का उद्देश्य मानव कार्यकलाप का अध्ययन है। तीसरा, इतिहास के निष्कर्ष तथ्य और साक्ष्य पर आधारित होते हैं। चौथा, इतिहास का कार्य अतीत के आलोक में मनुष्य की खोज और मनुष्य का मार्ग प्रदर्शन है। इसीलिए हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का अर्थ अनुसंधान और अन्वेषण के रूप में स्वीकारा। घ, हेरोडोटस का ऐतिहासिक अवदान। हेरोडोटस प्रथम इतिहासकार है जिसने आधुनिक इतिहास के क्षेत्र में अपने अनुदानों से मार्ग प्रशस्त किया। उसके इतिहास विवरण में विषय की एकता, समन्वय और व्यवस्था प्रथम खंड से लेकर अंतिम खंड तक भंग नहीं हुई है। यद्यपि उसके इतिहास के 9 भागों में प्राचीन यूनानी किंवदंतियाँ, कथानक और गीत भरे पड़े हैं, परंतु अपने कौशल से संतुलन बनाए रखा। उसने सर्वप्रथम अभिलेखों के आधार पर इतिहास को विश्वसनीय बनाया। डेल्फी के मंदिर में लेकेडेमोनियन परिवार के ने एक कृत्रिम अभिलेख उत्कीर्ण करवाकर अपने अधिकारों की पुष्टि की थी, किंतु हेरोडोटस ने एक ऐसे स्तंभ का उल्लेख किया जिसे यूनानियों ने डेल्फी में प्लातिया युद्ध के पश्चात बनाया था। कालांतर में उसे बाइजेंटियम नामक स्थल में ले जाया गया था। 19वीं सदी में वहीं से यह प्राप्त हुआ जिसमें प्राचीन लिपि में उन 31 राज्यों का उल्लेख है जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था। हेरोडोटस ने मात्र राजनीतिक घटनाओं का ही नहीं अपितु विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों का भी विवरण दिया है। उसने साक्ष्यों का प्रशस्त उपयोग किया। उसने अंतर्राष्ट्रीय इतिहास लेखन परंपरा का प्रवर्तन किया। उसने किंवदंतियों और कथानकों को वैज्ञानिक इतिहास की दीक्षा दी। अपने इतिहास लेखन में भूगोल को भी महत्व दिया। आलोचना के सिद्धांतों को स्वीकार किया। एक सामग्री संग्रहकर्ता के रूप में वह उभरता है। उसको श्रेय है कि वह पहला व्यक्ति था जिसने ऐतिहासिक सामग्री को क्रमबद्ध किया, तैथिक क्रम का तिरस्कार नहीं किया। इसीलिए जेबी ब्यूरी का विचार है कि हेरोडोटस का इतिहास के प्रति सबसे बड़ा अवदान यूनान के इतिहास की मौखिक सामग्री को एकत्रित करना है। प्रोफेसर वार्न्स का कथन है कि द फेम ऑफ हेरोडोटस विल इंड्यूरी एज द फर्स्ट कंस्ट्रक्टिविटी आर्टिस्ट इन द फील्ड ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग। हेरोडोटस ने गद्य में महाकाव्यों की विशेषताओं को भी ग्रहण किया, विश्व इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया, पौराणिक कथाओं के माध्यम से नैतिक आदर्शों की कहानी प्रस्तुत करता है और वचनबद्ध न होने में बहुत निपुण है। वह लिखता है, जैसा कि मुझे सूचना दी गई है, मुझे वह तो लिखना ही पड़ेगा जो कहा गया है, किंतु मैं उसे मानने को तैयार नहीं। इसीलिए प्रोफेसर साटवेल ने लिखा है कि हेरोडोटस कम्बिनेंड विथ द इंस्टिंक्ट ऑफ क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन द कंसुमेट स्किल ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट। हेरोडोटस के अनुसार इतिहास में गति और प्रवाह है, साम्राज्य और शासन उठते गिरते हैं। वस्तुतः यूनानी मनोवृत्ति ही भयंकर गति और परिवर्तन के भाव पर निर्भर थी। जीएस की शक्ति वज्र के संचालन में प्रकट होती है। पोजीडोन भूकंपों में अतिव्यक्ति होता है। अफ्रोदित इस भावातिरेक की प्रतीक है जो फेद्रा के गर्भ और हिपोलिटस सतीत्व का नाशक सिद्ध होता है। इस प्रकार प्राकृतिक परिवर्तन ही दैवी गति के द्योतक हैं। इस दृष्टिकोण से इतिहास भी परिवर्तन की प्रक्रिया है। हेरोडोटस की कृति में घटनाओं का चलचित्र सतत गति से चलता रहता है। ऐतिहासिक त्रुटियां। हेरोडोटस के ऐतिहासिक विवरण में वे त्रुटियां भी हैं जो यूनानी स्वभाव में बद्धमूल थीं। उनके वृत्तांत साक्षियों की सूचनाओं पर आधारित थे। इसमें एक संकीर्ण परिधि उत्पन्न हो गई थी जिसमें इतिहासकार फंस कर रह गया था। वह केवल सामायिक घटनाओं का ही सीहा अवलोकन कर सकता था। सुदूर अतीत उसके लिए एक गूढ़ पहेली थी। तथापि हेरोडोटस सुक्रतु की तरह एक युगांतकारी नेता थे। इस प्रकार सुक्रतु की विचार पद्धति उनके बाद विभिन्न मतांतरों में फंसकर स्वातंत्र्य के मार्ग से अलग हो गई। इस प्रकार इतिहास की पद्धति उनके बाद समाप्त सी हो गई। हेरोडोटस विषयांतर बहुत करता है क्योंकि एंथेस वासियों की विषयांतर में अत्यधिक रुचि थी। डायोनीसियस कहता है कि हेरोडोटस जानता था कि किसी भी लंबे वृतांत से श्रोतागण उब जाते हैं, किंतु यदि बीच में विषयांतर कर दिया जाए तो वह उन्हें रुचिकर होता है और अधिक पढ़ने की इच्छा होती है। उसके वृतांत सूचनाओं पर आधारित थे। प्राच्य देशों की निरंकुशता और यूनानियों की स्वतंत्रता और सभी संविधानवाद के वर्णन में वह पक्षपात करता है। वह व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर इतिहास को विकृत भी करता है। वह अम्योनिया की बुराई और एंथेसवासियों की प्रशंसा करता है। दैवी व मानवीय घटनाओं में भी वह सूक्ष्म अंतर नहीं करता। हिकेटियस से बहुत सी सामग्री ली परंतु कहीं भी इसका नाम नहीं लिया है। इसी कारण इतिहासकार हेरोडोटस की नकल को प्रमाणित कर सके हैं। वह केवल सामायिक घटनाओं का ही सिहावलोकन कर सका है। सुदूर अतीत उसके लिए एक गूढ़ पहेली थी। उपर्युक्त त्रुटियों के होने के पश्चात भी यह निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया है कि हेरोडोटस ने आधुनिक इतिहास का जो दीक्षा दी वह प्रशंसनीय है। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, क्योंकि उसने यूनान की ऐतिहासिक परंपरा का एक आधुनिक मार्ग प्रदान किया। थियुसडाइडीज 456 से 396 BC 456 टू 396 BC जीवन वृत्त। यदि हेरोडोटस इतिहास विधा का जनक था तो थियुसडाइडीज वैज्ञानिक इतिहास विधा का प्रवर्तक था। यह 27 वर्षीय यूनानी युद्ध के 8वें एंथेस के 10 सेनापतियों के मंडल के सदस्य नियुक्त हुए थे। सैनिक कार्यों के अतिरिक्त इसे नागरिक शासन का भी संचालन करना पड़ा था। 424 से 423 BC की शरद ऋतु में बेथामोस में एंथेस के जंगी बेड़े के अधिनायक थे। इस वर्ष उनके नेतृत्व से सेना को पराजित होना पड़ा, जिससे एंथेस वासी अप्रसन्न होकर थियुसडाइडीज को अपराध घोषित कर निर्वासित कर दिया। इस निर्वासन काल में उन्होंने इस युद्ध में विविध पक्षों का अध्ययन करके इसका वृत्तांत लिपिबद्ध किया। इस ग्रंथ के 2/3 भाग को ही वे पूरा कर पाए, क्योंकि लगभग 50 वर्ष में आयु में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। थियुसडाइडीज हेरोडोटस के समकालीन होते हुए भी इतिहास दर्शन का उनका अपना ही स्वतंत्र दृष्टिकोण था। वह केवल घटनाओं को वृत्तांत रूप में लिखकर ही संतुष्ट नहीं होते थे, वरन वह उनका कारण भी खोजते थे। एक प्रकार से देखा जाए तो थियुसडाइडीज यूनानी इतिहास दर्शन के वास्तविक रचनाकार थे। रचनाएं थियुसडाइडीज की प्रसिद्ध कृति पेलोफोनेसियन वार 431 से 404 BC में लिखी गई। इस कृति में उन्होंने युद्ध में परिस्थितियों का सूक्ष्म विवेचन किया है। यह कृति स्पार्टा और एंथेस के संघर्ष पर प्रकाश डालती है। विषय एवं परिस्थितियाँ थियुसडाइडीज द्वारा प्रणीत पुस्तक पेलोफोनेसियन वार का विषय बहुत सीमित और संकुचित था, अतः उसके रचना में युद्ध के अनेक प्रसंगों का शास्त्रीय विवेचन मिलता है। वह स्वयं एंथेस के नौसेना के एडमिरल थे, इसीलिए उन्होंने यूनानी में सेना का विस्तृत विवेचन किया है जो निम्नवत है। पहला, युद्ध के अनेक प्रसंगों का शास्त्रीय विवेचन हुआ है। एंथेस का जीवन वहाँ की नाभिक शक्ति पर आधारित थी। एंथेस का ही क्यों, यूनान की शक्ति ही नाभिक शक्ति में निहित थी। सेकंड, आर्थिक प्रक्रियाओं का भी सुंदर विवेचन किया गया है। एक सुदीर्घ युद्ध के लिए एक संपन्न कोष की अनिवार्यता वह समझते थे, अतः राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला है जिसमें यूनानी जगत के उन्नतिशील व्यापार के महत्व की विवेचना भी सम्मिलित है। थर्ड, यह सिद्ध किया है कि सबल राष्ट्र की शक्ति नैतिक उत्थान में निहित होती है। इस प्रसंग में उनके यह शब्द एक तरह से इतिहास के स्वर्णाक्षर हैं। न्यायप्रियता अवसर सेविता से अधिक श्रेष्ठ है। भगवान सत्य का समर्थक है। ख्याति प्रियता बहुधा मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है। राजनीतिक अन्याय हिंसा से भी जघन्य है। कानून का शब्दशः प्रयोग हानि पहुंचाता है। फोर, उन्होंने लिखा है कि शक्ति संचय की प्रवृत्ति तथा अपने से दुर्बल पर शासन करने की इच्छा मनुष्य की प्रवृत्ति में इतनी गंभीरता से बद्धमूल है कि उसका निष्कासन या परित्याग संभव नहीं है। युद्ध शास्त्र के अतिरिक्त आर्थिक प्रतिक्रियाओं, उन्नतिशील व्यापार, नगरों के विकास का भी विवरण सैनिक दृष्टि से ही किया है, इसीलिए इनके ग्रंथ को समकालीन इतिहास कहा जाता है। इन्होंने हेरोडोटस से भिन्न इतिहास का अवलोकन किया क्योंकि दोनों की मानसिक प्रवृत्तियों में अत्यधिक अंतर रहा है। थियुसिडाइड की ऐतिहासिक विशिष्टताएं, हेरोडोटस से भिन्न दृष्टि होने के कारण इसने इतिहास को एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया। पहला, रुचिकर कहानी शैली को तिलांजलि देकर विशुद्ध और गंभीर ऐतिहासिक सत्य लिखने की परिपाटी को स्थापित किया। दूसरा, इतिहास को काव्य और देवी चमत्कारों से पृथक किया तथा घटनाओं के कारण ढूंढने में उसने देववाद को अस्वीकार कर दिया। तीसरा, उसने इतिहास को एक नई पद्धति प्रदान किया। डॉक्टर मजूमदार का कथन है कि वन ऑफ द चीफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द थियुसिडाइड टू ग्रीक हिस्टोग्राफी बाज हिज मेथोडोलॉजी। चौथा, थियुसिडाइड विशुद्ध बुद्धिवादी थे। उन्होंने इतिहास के अध्ययन में आलोचनात्मक बुद्धिवाद का उपयोग किया। वे कथा, व्याख्यान और किंवदंतियों पर श्रद्धा न रखते वरन उनको वैदिक आलोचना के कसौटी पर रखते थे। पांचवा, उन्होंने विषय वस्तु की सामग्री को प्रासंगिकता, तर्कसंगत एवं अकाट्य आधार पर प्रस्तुत किया। इतिहास के व्यवहारिकता में उसका मत था कि जो घटनाएं घटी हैं उसकी सही जानकारी अत्यंत लाभकर होगा क्योंकि मनुष्य के अनुसार वैसी घटनाएं पुनः घटेंगी। छठा, साक्ष्यों और तथ्यों का परीक्षण कर उचित व्याख्या के साथ प्रस्तुत करने में उनका विश्वास था। इतिहास में मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रारंभिक विवेचन उनके पात्रों के चरित्र वर्णन में प्राप्त होता है। सातवां, यद्यपि थियुसिडाइड मात्र राजनैतिक इतिहासकार थे परंतु उन्होंने राजनीति शास्त्र को एक दार्शनिक के रूप में देखा। आठवां, उनकी कृति सामाजिक मनोविज्ञान का आवर ग्रंथ कही जा सकती है। जैसा कि सी मन राकेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थियुसिडाइड एंड द साइंस ऑफ हिस्ट्री में लिखा है कि थियुसिडाइड पर हिप्पोक्रेटिक चिकित्सा शास्त्र का प्रभाव है जो मनोविज्ञान के प्रथम आचार्य थे। इसीलिए थियुसिडाइड के विवरण में सामाजिक मनोविज्ञान की अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि थियुसिडाइड का इतिहास दर्शन सामाजिक मनोवैज्ञानिक चिंतन के मापदंड प्रस्तुत करता है। उनके द्वारा किए गए प्लेग युद्ध की उत्तेजना, कोशिश की क्रांति के आवेग आदि वर्णन पूर्ण मनोवैज्ञानिक आधार पर किए गए हैं। थियुसिडाइड की रुचि ऐसे मनोवैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा नियमों के निर्धारण में थी जिनसे सामाजिक घटनाएं गतिशील रहती हैं। उन्होंने घटनाओं की अपेक्षा उनके पीछे कार्य करने वाले नियमों में अधिक रुचि ली है, अतः वे अस्थाई नियमों के अन्वेषक सिद्ध होते हैं। थ्यूसिडाइडिस की त्रुटियां। वह समय के महत्व को नहीं समझ सका, हेरोडोटस के समान भौगोलिक तथ्यों को नहीं स्वीकारा, सामयिक इतिहास ही लिख सका और समसामयिक में भी इतिहास को केवल राजनैतिक और सैनिक परिप्रेक्ष्य में देखा। उसने एंथेस के संस्कृति की उपेक्षा की, इसीलिए वार्नेस ने लिखा है कि ही वाज अनबिलेई फुल्ली टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन दियर ट्रू हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, नॉर डिड द पोसेसेज हेरोडोटस ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन हिस्टोरिकल सिचुएशन। परंतु त्रुटियों के होते हुए भी प्रोफेसर ब्यूरी ने उसके अवदानों को स्वीकार करते हुए लिखा है कि द वर्क ऑफ थ्यूसिडाइडिस मार्क्स द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डिसेसिव स्लिप दैट एवर बीन टेकन बाई ए सिंगल मैन टुवार्ड्स मेकिंग हिस्ट्री व्हाट इट इज टुडे। अकेले इसने तर्क को इतिहास लेखन का आधार बनाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास की बुद्धिवादी आलोचनात्मक पद्धति को प्रस्तुत किया। वह यूनानी इतिहास परंपरा में एक नूतन योगदान रहा। जेना फान 430 से 354 बीसी 430 टू 354 बीसी जीवन वृत्त। थ्यूसिडाइडिस के पश्चात उसके अपूर्व कृति को पूरा करने वाला यह विद्वान 50 वर्ष तक अग्रगति दिया, परंतु 362 ईसा पूर्व के मैतिनिया युद्ध के वर्णन पर उन्होंने दुखी होकर अपनी लेखनी रोक दी थी। इनका जन्म युद्ध और अशांति के काल में हुआ था, जब 27 वर्षीय युद्ध चल रहा था। किंवदंती है कि उन्होंने डेलियम के युद्ध में भाग लिया था, परंतु यह विश्वसनीय नहीं। उन्होंने हखा मसी वंश के नरेश साइटस की सेना में नौकरी की, उनके गुरु सुकरात को रोकने पर भी उन्होंने अवज्ञा की, फलतः उन्हें एंथेस से निर्वासित कर दिया गया। 394 ईसा पूर्व में वे स्पार्टा की सेना में सम्मिलित होकर अपने नगरवासियों के विरुद्ध लड़े। पुरस्कार में उन्हें पेलोपोनीज के पास भूमि मिली, वहीं रहने लगे, परंतु कालांतर में वहां से निर्वासित कर दिया गया। रचनाएं। जेनोफान ने दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, कृषि, व्यापार, खेलकूद, आखेट, घुड़सवारी शिक्षा आदि पर बहुत कुछ लिखा, परंतु उनकी प्रसिद्ध कृति इतिहास ग्रंथ हेलेनिका और एनावेसिस है। अन्य ग्रंथों में एगिसोलोस तथा मेमोरी बिलिया प्रमुख है। नोनिका नामक ग्रंथ में इसने थ्यूसिडाइडिस की अपूर्ण कृति को पूरा करने की चेष्टा की है। एनोवेसिस में कुरूप के 10,000 सैनिकों के 404 से 401 ईस्वी पूर्व के अभियान की कथा है। ग्रीक भाषा में लिखा हुआ बहुत ही सुंदर संस्मरण था। एगिसिलोस में एगिसिलास की जीवनी है। यह एक इतिहासकार द्वारा लिखी पहली जीवनी है। बेज एंड मिंस नामक ग्रंथ में आर्थिक विवरण दिया गया है। जेनाफान ने इतिहास की यूनानी परंपरा में मात्र यही योगदान दिया कि इसने युद्ध का सचित्र चित्रण किया, संस्मरण मेमोरीज लिखने का कार्य आरंभ किया, ऐतिहासिक जीवन लिखने की प्रेरणा प्रदान किया तथा यूनानी राजनीति में आर्थिक तत्वों को भी प्रस्तुत किया, परंतु इसके द्वारा प्रस्तुत विवरण थ्यूसिडाइडिस के विवरण से निम्न स्तर का विवरण था। आज के युग में जेनाफान की मान्यता केवल एक पत्रकार, लेखक अथवा युद्ध के संवाददाता के रूप में ही होता है, इससे अधिक नहीं। पोलीबस 198 से 171 बीसी 198 टू 171 बीसी यूनानी जगत के प्रसिद्ध इतिहासकारों में पोलीबस का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। ओलिवस ने बहुत ही कम उम्र में एक राजदूत तथा न्यायाधीश के पद पर कार्य किया। इनके लेखन द्वारा रोम और यूनान के संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। जीवन वृत्त। इनका जन्म 198 ईसवी पूर्व में आर्केटिया के मेगालोपोलिस नामक नगर में हुआ था। इसके पिता लिकार्टस एकियन लीग के सेनापति फिले पोमेन के मित्र थे। एकियन राष्ट्रमंडल की ओर से सिकंद्रिया में टालेमी एसिफानिस की सभा में दूत नियुक्त किया गया। रोम मकाइनिया युद्ध के पश्चात रोम भेजे जाने वाले प्रमुख राजनीतिज्ञों में पोलिबस भी था। वे तटस्थ दृष्टि से रोम का उत्कर्ष देखते रहे। सीपियों के खेल कार्थज के मोर्चे पर गया, जहां उन्होंने कार्थेज के ध्वंस का अंतिम कांड देखा। रोमन राज्य के प्रशासक रूप में कार्य किया। कालांतर में राजनीति से पृथक होकर जीवन के अंतिम 15 अध्ययन अनुसंधान और इतिहास लेखन में व्यतीत किया। पोलिबस की विशेषताएं। पहला, विचार पद्धति। रोमन साम्राज्य की एकता से प्रभावित होकर उसने लिखा है कि घटनाओं की एकता से इतिहास के सूत्रों में भी एकता आ गई है। इस एकता को ही प्रकट करना इतिहासकार का मुख्य कार्य है। इस दृष्टिकोण से पोलिबस ने इतिहास की प्रक्रिया में एकता, अछूनता और सार्वभौमिकता के दर्शन किए। दूसरा, कार्य कारण का आधार। इसने अपने वर्णन में यद्यपि राजनीतिक घटनाओं और युद्ध शास्त्रीय विवेचना को चुना, परंतु उसकी पद्धति कार्य कारणवाद के सिद्धांतों पर आधारित थी। इस कार्य कारण पद्धति को विशुद्ध दृष्टिवादी सिद्धांत के रूप में स्वीकारा। तीसरा, भूगोल स्थलाकृति का उपयोग। पोलिबस का मत था कि इतिहासकार के लिए स्थलाकृति जियोटोपोग्राफी का ज्ञान होना आवश्यक है। प्राचीन अभिलेखों के उपयोग पर उन्होंने विशेष बल दिया। पॉलीबियस लेड ग्रेट इम्फेसिस ऑन ट्रूथ विच द डिस्क्राइब्ड एज द आइज ऑफ हिस्ट्री। पॉलिबस की निष्पक्षता दूसरों के लिए आदर्श थी। थियुसिडाइडिस की भांति वह भी इतिहास की उपयोगिता को मानता था। उसका विश्वास था कि इतिहास का महत्व तथ्यों के सही दर्शाने में है, जो शासन के लिए अथवा जनमत के लिए निर्देशन का कार्य करता है। प्रोफेसर सेटवेल का कथन है कि पोलिबस गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग आर द फर्स्ट एंड नोबलिस्ट स्टेटमेंट ऑफ साइंटिफिक आइडियल्स फॉर द हिस्टोरियन अंटिल द डेज ऑफ रैंके। रचनाएं। पोलिबस की प्रसिद्ध कृति हिस्ट्री 40 भागों में लिखा गया था, जिसमें रोमन जाति के उत्कर्ष का वर्णन था। यह वर्णन रोमन लोगों द्वारा इटली से 164 ईस्वी पूर्व में समुद्र पार करने से प्रारंभ होता है और 146 ईस्वी पूर्व में कार्थेज के वर्णन तक समाप्त होता है। अद्यतन 5 भाग ही उपलब्ध हैं, जो यूनानी रोमन ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश डालता है। उसने प्यूनिक तथा कार्थेज युद्धों का भी वर्णन किया है। चौथा, त्रुटियां। पोलिबस की दुर्बलता उनकी भाषा और शैली है। उन्होंने गड्ढी मड्ढी ऐतिक भाषा का प्रयोग किया, जिसमें कृत्रिमता की गंध आती है। उनकी शब्दावली पर दार्शनिक और वैज्ञानिक परिभाषाओं की दुरूहता की गहरी छाप है। कहीं कहीं अधिक महत्व दोष भी खटकता है, परंतु उनकी आलोचनात्मक पद्धति से रोमन इतिहास लेखन को पर्याप्त प्रेरणा मिली है। उन्होंने रोमन संविधान के महत्व को भली भांति पहचाना और इस दिशा में सीसरों और टेसिटस का मार्गदर्शन किया। अन्य यूनानी इतिहासकार। यूनान के ऐतिहासिक परंपरा में आयोन और अस्टेसिम ब्रोटस का नाम भी आता है, जिन्होंने क्रमशः चियोस राज्य का इतिहास तथा थेमिस्टो थेमिस्टोक्लीज, थिस्डाइडिस तथा पेरिक्लिस के जीवन चरित्र लिखे। उफोरस नामक इतिहासकार ने एंथेस, स्पार्टा, किविज आदि विभिन्न यूनानी राज्यों के इतिहास को संग्रहित करके यूनानी जाति का संपूर्ण इतिहास लिखने की चेष्टा की। उनकी पद्धति आलोचनात्मक थी, साक्ष्य का विवेचन उनकी मुख्य विशेषता थी। अस्टोइक पोसिडोनियस, अस्टोइक पोसिडोनियस यूनान के ऐतिहासिक विचारों के विकासात्मक सर्वेक्षण में जिन अन्य इतिहास लेखकों का नाम लिया जा सकता है उनमें प्रमुख रूप से अस्टोइक पोसिडोनियस है। इन्होंने पोलीबियस के बिंब इतिहास की परंपरा बनाए रखा। इनका प्रमुख कार्य भूगोल और इतिहास पर है। इसने 74 ईस्वी पूर्व से इतिहास पर कार्य आरंभ किया। 144 ईस्वी पूर्व से 82 ईस्वी पूर्व तक के काल पर 52 पुस्तकों 52 पुस्तकों का प्रणयन इन्होंने किया। इनकी पद्धति आलोचनात्मक थी। अस्ट्रैबो 64 ईसा पूर्व से 19वीं ईस्वी। अस्ट्रैबो ने भी भूगोल और इतिहास पर लिखा। इसने अपने तक के भूगोलविदों के कार्यों का विवरण दिया है। इसकी पद्धति आप्त पद्धति थी। ऐतिहासिक रचनाओं में इसकी रचना अलेक्जेंडर प्रसिद्ध रचना है। डायोडोरस सिकुलस 80 से 29 ईस्वी पूर्व। इस इतिहासकार ने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि उसने अपने समय के इतिहास को 40 जिल्दों में संकलित करने का प्रयास किया, जिसको बी वी लियो वोथिका हिस्ट्रिया के नाम से जाना जाता है। इसने मिस्र, यूनान तथा सिसिली का विवरण दिया है। इसने अपने ग्रंथ संपादन में क्रोनिकल पद्धति का प्रयोग किया। इनके द्वारा संपादित 40 भागों में अत्यल्प ही प्राप्त है, वह भी फ्रैगमेंट्स के रूप में सिकंदर के भारतीय अभिमान के संदर्भ में है। प्लूटार्क सन 50 से 125 ईस्वी। प्लूटार्क ने भी यूनान और रोम के प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी प्रालेल लिविस लिखा था। इस ग्रंथ में इन्होंने 46 जीवनियां लिखी थी। इस ग्रंथ में रोम और यूनान के अनेक महान व्यक्तियों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तात्कालिक सांस्कृतिक ज्ञान का परिचय प्राप्त करने के लिए भी यह पुस्तक महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर शार्टवेल का कथन है कि प्लूटार्क शोज द लार्जर एंड ए मोर कैथोलिक माइंड देन हीज ब्रिलियंट कंटेम्पोररी टैक्टस। उक्त यूनानी लेखकों के अतिरिक्त एपियन की हिस्ट्री ऑफ रोम, सिसिली की डायोडोरस की वर्ल्ड हिस्ट्री तथा अमेनियस की हिस्ट्री ऑफ द रोमन एम्पायर आदि ऐतिहासिक ग्रंथ भी प्राप्त है, जो यूनानी इतिहास लेखन परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है। प्रोफेसर तम्पसन का कथन है कि द ग्रीक्स रोट हिस्ट्री ऑफ ऑल कैरेक्टर्स ऑफ ऑल डायमोनियस द हिस्ट्री ऑफ मैन थिंग्स नेशन सिटीज यूनिवर्सल एनालिस एंड लोकल क्रॉनिकल्स पॉलिटिकल लिटरेरी एंड मिलिट्री मेमोरी द ग्रीक फर्स्ट लियरनेट द आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। परंतु यूनानी इतिहासकार पक्षपाती, आत्मप्रशासक, देववादी और मिथिकल भी पर्याप्त रूप से थे। समाप्त।